समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार श्रोताओं, आप सुनना शुरू कर चुके हैं आकाशवाणी गोल्ड का कार्यक्रम आज सवेरे। रोजाना की तरह आज भी हम तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर आ गए हैं आपके पास। इसके अलावा इतिहास की भी होगी बात और जानेंगे कि आज का दिन खास क्यों है। साथ ही आज कुछ विशेष हस्तियों को भी हम याद करेंगे। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। गुड मॉर्निंग शगुन।
गुड मॉर्निंग सर फिरोजी। नमस्कार, गुड डे एवरीबॉडी, वेलकम अलोंग लिसनर्स। दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे विद मी शगुन चोपड़ा टुडे एंड सर फिरोजी इज माय को एंकर। वेल एज ऑलवेज विल फर्स्ट प्रोवाइड यू द डेली न्यूज, इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज। विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द मेट्रो सिटी अपडेट्स, विल इन्फॉर्म यू वेल एंड द हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू टुडे। Today is 30th of December.
जी बिल्कुल शगुन, कार्यक्रम में ये सब कुछ होगा। फिलहाल नजर डाल लेते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग में प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विषय के जानकारों के साथ बैठक करेंगे। ये चर्चा सरकार द्वारा महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों से पहले किए जा रहे परामर्शों का हिस्सा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में शामिल होंगी। श्री मोदी आगामी केंद्रीय बजट पर अर्थशास्त्रियों के सुझाव और दृष्टिकोण जानेंगे। इस तरह के परामर्श सरकार की बजट पूर्व प्रक्रिया का नियमित हिस्सा है।
Union Civil Aviation Minister Kinjarappu Ram Mohan Naidu will flag off the inaugural flight of the Dhruv NG helicopter in Bengaluru today. The advanced light helicopter, next generation Dhruv NG, is the civil version of the indigenous helicopter showcased by HAL at Aero India 2025. It can carry 6 to 14 passengers and will be used for tourism, VIP travel, disaster relief, flood management and offshore operations. So the helicopter is powered by indigenous Shakti engines and includes upgraded features for civil certification.
सरकार ने गंगा के तराई वाले क्षेत्रों में लुप्त प्राय पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारतीय स्किमर सहित रेत के टीलों पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों के प्रजनन स्थलों की रक्षा के लिए एक नई परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पक्षी जगत पर केंद्रित अपनी तरह की पहली पहल है और डॉल्फिन, मछलियों तथा कछुओं आदि पर NMCG के कार्यों को आगे बढ़ाएगी। नमामि गंगा मिशन के दूसरे चरण के अनुरूप ये परियोजना दीर्घकालिक निगरानी, सामुदायिक भागीदारी और साक्ष्य आधारित संरक्षण पर केंद्रित है।
India's solar power capacity has crossed 130 gigawatt as of November this year, according to the Ministry of New and Renewable Energy. So this marks a 41% increase from last year's capacity of over 94 gigawatt. The ministry informed that more than 3,000 megawatt of solar projects were commissioned this year in various solar parks under the Solar Parks and Ultra Mega Solar Power Project scheme. In addition, government entities commissioned around 3 gigawatt of solar power projects under the Solar Power Commissioning Program.
सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत नकद लेन देन और घर में एक निश्चित सीमा से अधिक धन रखने से संबंधित नए कर और दंड लगाए जाएंगे। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि नए अधिनियम में संबंधित प्रावधानों के संबंध में किसी भी नए कर या दंड का कोई प्रावधान नहीं है। पत्र सूचना कार्यालय ने करदाताओं से सटीक जानकारी के लिए आयकर पोर्टल और मैपिंग टूल का उपयोग करने का आग्रह किया है।
फॉर्मर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर एंड BNP चेयरपर्सन खालिदा जिया पास्ड अवे एट अ हॉस्पिटल इन ढाका दिस मॉर्निंग। शी वाज 80। दिस वाज डिस्क्लोज्ड बाय BNP इन सोशल मीडिया पोस्ट। BNP's मीडिया सेल सेड खालिदा जिया डाइड व्हाइल रिसीविंग मेडिकल केयर एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल। खालिदा जिया, अ two-time प्राइम मिनिस्टर, वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स इन बांग्लादेशी पॉलिटिक्स फॉर डेकेड्स एंड सर्व्ड एज BNP चेयरपर्सन फॉर मेनी ईयर्स।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन अगले वर्ष फरवरी में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव S. कृष्णन ने दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी।
इंडिया वुड होस्ट द नेक्स्ट एआई समिट।
भारत अगले वर्ष एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये सम्मेलन 15 से 20 फरवरी तक चलेगा। इस सम्मेलन को एआई इंपैक्ट समिट का नाम दिया गया है।
एआई इंपैक्ट समिट।
श्री कृष्णन ने कहा कि सम्मेलन में भविष्य को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक जिम्मेदार भूमिका पर चर्चा होगी। 140 से अधिक देशों के एआई विशेषज्ञ इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फिडे वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2025 के पहले दिन भारत के अर्जुन एरिगेसी शीर्ष स्थान पर रहे। अर्जुन 13वें दौर में 10 अंकों के साथ मैक्सिम वाचियर लाग्रेव और फेबियानो कारवाना के साथ ओपन वर्ग में शीर्ष पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर अर्जुन एरिगेसी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शतरंज के प्रति उनके समर्पण की सराहना की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
इन अनदर स्पोर्ट्स अपडेट, इन विमेन्स क्रिकेट इंडिया विल टेक ऑन श्रीलंका इन द फिफ्थ एंड फाइनल T20 इंटरनेशनल इन तिरुवनंतपुरम केरला दिस इवनिंग, सो द मैच विल बिगिन एट 7 PM।
श्रोताओं, अभी हमने देश भर का हाल जान लिया और शगुन अब समय है कि अपने श्रोताओं को महानगरों का हाल भी देते चले। शुरुआत कर रही हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से, तो शगुन शुरू करते हैं महानगरों की जानकारी।
यस सर फिरोजी, मेट्रो सिटी अपडेट्स बिगिनिंग विद चेन्नई। चेन्नई विल सून हैव अ रियल टाइम बस अराइवल सिस्टम टू हेल्प पैसेंजर्स प्लान देयर ट्रैवल एंड रिड्यूस वेटिंग टाइम। सो एज पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम or ITS project funded by GICA, LED display boards have been installed at 500 bus stops and 65 bus stands as well. These boards show live bus arrival times using GPS data from MTC buses and are also linked to the Chennai One mobile app. Around 3,000 buses are already fitted with tracking devices and trial runs. They have been successful and the system is expected to be fully operational by March 2026. Over to Bengaluru.
Ji.
The Indian Institute of Horticultural Research organized a walkathon for cleanliness near Bengaluru in collaboration with the Hesarghatta and Hurula Chikkanahalli Gram Panchayats. Yelahanka MLA SR Vishwanath flagged off the event and he urged citizens to maintain cleanliness as part of the Swachh Bharat mission, avoid littering and adopt good waste management practices. So walkathon promoted messages on waste segregation, reducing plastic use and keeping the environment clean and green, which should be the goal. Okay, over to Hyderabad now. The Telangana government has reorganized police commissionerates in Hyderabad, increasing their number from 3 to 4 by creating a new future city commissionerate. The move aims to improve public services, also law and order and crime control as the city expands. As part of the changes, Rotakunda Commissionerate has been named Malkajgiri with revised boundaries. Cyberabad will now focus mainly on IT and nearby industrial areas, while the Hyderabad Commissionerate's jurisdiction has expanded to include Shamshabad Airport and the upcoming High Court Complex at Burwell. The reorganization follows the expansion of Great Hyderabad Municipal Corporation up to the Outer Ring Road and the development of Bharat Future City. So these were the updates from Chennai, Bengaluru, Hyderabad. Let's find out what's happening in Delhi, Mumbai, Kolkata from Sarfirozi.
Ji, bilkul Shagun, shuruaat kar rahe hain Rajdhani Delhi se. दिल्ली सरकार राजधानी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सावदा घेवरा क्षेत्र में अगले वर्ष तक आवास उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की मौजूदा EWS आवासीय कॉलोनियों में सामुदायिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि सावदा घेवरा EWS आवासीय कॉलोनी लगभग 37 एकड़ से अधिक भूमि में विकसित की गई है। राजधानी दिल्ली में देश का सबसे बड़ा साहित्य तथा सांस्कृतिक उत्सव शब्दोत्सव का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि ये उत्सव अगले महीने की 2 तारीख से 4 तारीख तक मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 40 से अधिक पुस्तकों का विमोचन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और कवियों की सभाएं होंगी। मंत्री ने बताया कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर के 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के छात्र भाग लेंगे। कार्यक्रम के लिए दिल्ली शब्दोत्सव की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कराया जा सकता है। कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। और शगुन, अब चल रहे हैं महानगर मुंबई की ओर। भ्रिन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने नववर्ष 2026 के उत्सव से पहले नागरिकों और प्रतिष्ठानों के लिए अग्नि सुरक्षा से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने दुर्घटनाओं और जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए अग्नि सुरक्षा के प्रति सतर्कता के महत्व पर जोर दिया। बीएमसी और मुंबई अग्निशमन विभाग ने प्रतिष्ठान मालिकों और कार्यक्रम आयोजकों के लिए अलार्म, अग्निशामक यंत्र आदि जैसे अग्नि सुरक्षा उपकरणों को कार्यशील स्थिति में रखने की सलाह दी है। उन्होंने कार्यक्रमों के दौरान आपातकालीन निकास द्वार खुले रखने और दरवाजों को बिना ताला लगाए रखने का भी आग्रह किया है। बीएमसी चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक आने के साथ ही प्रमुख राजनीतिक दल सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप दे रहे हैं और उम्मीदवारों की सूची जारी की जा रही है। दलों ने एबी फॉर्म जारी करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के लिए 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। भाजपा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी बीएमसी चुनावों के लिए 87 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि बीएमसी चुनाव के लिए मुंबई में लगभग 50,000 मतदान कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक आखिरी खबर है महानगर कोलकाता से। शगुन, वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का वरिष्ठ दल अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आज पश्चिम बंगाल पहुंचेगा। प्रतिनिधि मंडल मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रगति की समीक्षा करेगा। वे कई जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। चर्चा में SIR प्रक्रिया और शहरी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ऊंची इमारतों और गेटेड आवासीय परिसर में अलग अलग मतदान केंद्र स्थापित करने की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। श्रोताओं, ये अब तक हम लेकर आए जानकारी महानगरों के हाल की। अब आपको बिल्कुल महानगरों के मौसम की भी जानकारी दे देते हैं शगुन, अपने श्रोताओं को।
प्लीज गो अहेड।
शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान के 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान के 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं कोलकाता में भी सुबह कोहरा और धुंध रहेगी। न्यूनतम तापमान के 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो शगुन, आपके पास महानगरों के मौसम की क्या जानकारी है?
I will again begin with Chennai, Sir Firozi. So, in the morning, Chennai is expected to have fog mist and partly cloudy sky later. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and maximum temperature will be around 29 degrees. If I talk about Bengaluru, it is expected to have mist and the minimum temperature was 15 degrees Celsius. Maximum will be around 28 degrees Celsius. Hyderabad, it is also expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature, minimum temperature, will be around 14 degrees Celsius and maximum temperature will be around 27 degrees Celsius there, Sir Firozi.
जी शगुन, और अब कार्यक्रम का वो अंक आ गया है जहां हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि आज का जो दिन है यानी 30 दिसंबर वो इतिहास में क्यों दर्ज हो गया। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शगुन, साल 1803 से ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली, आगरा और भरूच पर आज ही के दिन नियंत्रण कर लिया।
एंड इन 1687 the Madras Municipal Corporation, the oldest municipal body in India, was established by royal charter issued by King James II.
और वक्त में थोड़ा सा आगे चलते हैं शगुन, 1893 में आज ही के दिन रूस और फ्रांस ने सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए।
In 1853, the US and Mexico signed a treaty where the US bought roughly 30,000 square miles of land, which is now Arizona, New Mexico, for $10 million US dollars then.
और 1922 में रूस की राजधानी मॉस्को के बोलशोई थिएटर से सोवियत संघ के निर्माण की औपचारिक रूप से आज ही के दिन घोषणा की गई।
Well, in 1922, the Union of Soviet Socialist Republics formally established as Federation of Russia, Ukraine, Belarus and Transcaucasia.
आज ही के दिन 1943 में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में भारत की आजादी का झंडा लहराया।
We'll tell you about 1924. Astronomer Edwin Hubble revealed that the so-called spiral nebulae, such as Andromeda, were not gas clouds within the Milky Way, but they were enormous separate galaxies located far beyond it. So this breakthrough discovery expanded humanity's view of the universe and laid the foundation for modern cosmology by astronomer Edwin Hubble, inspired by that.
और 1975 में आज ही के दिन अफ्रीकी देश मेडागास्कर में संविधान प्रभावी हुआ।
We are going a little back. In 1927, the Ginza Line, Asia's first subway system, opened to the public in Tokyo, Japan.
और 1989 में आज ही के दिन पश्चिमी अफ्रीकी देश टोगो ने अपना संविधान अंगीकार किया।
In 1949, India became the first non-communist nation to formally recognize the People's Republic of China.
वर्ष 2000 में जनरल उमर इल बशीर आज ही के दिन दोबारा सूडान के राष्ट्रपति चुने गए। और आज ही के दिन 2008 में सूर्य शेख गांगुली ने 46वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता।
एंड अगेन वी आर टेकिंग आवर लिसनर्स वे बैक इन 1972 सर फिरोजी फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ऑर्डर्ड अ होल्ट टू द क्रिसमस बॉम्बिंग ऑपरेशन लाइन बैकर 2 एंड अग्रीड टू रिज्यूम पीस टॉक्स टू हेल्प ब्रिंग द वियतनाम वॉर टू एन एंड सो वी वर जर्निंग बैक To the history, way back in time.
जी बिल्कुल शगुन, हमने देखा कि आज का दिन जो है क्यों खास रहा, क्यों दर्ज हो गया इतिहास के पन्नों में,
हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन।
जी बिल्कुल, और आज ही के दिन कुछ ऐसी हस्तियां भी हुई शगुन जो हमें या तो छोड़कर चली गई या इस दुनिया में
बॉर्न टूडे।
जी बिल्कुल, तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं विक्रम साराभाई से, जिन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इनका पूरा नाम डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई था। इन्होंने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर देश की उपस्थिति दर्ज करा दी। विक्रम साराभाई ने अन्य क्षेत्रों में भी समान रूप से पुरोगामी योगदान दिया। वे अंत तक वस्त्र, औषधीय, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य क्षेत्रों में लगातार काम करते रहे। डॉक्टर साराभाई एक रचनात्मक वैज्ञानिक, एक सफल और भविष्य दृष्टि उद्योगपति, सर्वोच्च स्तर के प्रवर्तक, एक महान संस्थान निर्माता, एक भिन्न प्रकार के शिक्षाविद, कला के पारखी, सामाजिक परिवर्तन के उद्यमी, अग्रणी प्रबंधन शिक्षक और बहुत कुछ रहे। पुरस्कारों की बात की जाए तो इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सहित पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
Also telling you that known as the cradle of space sciences in India, the physical research laboratory, it was founded in 1947 by Vikram Sarabhai. So let me tell our listeners about another physicist now, Sir Firozi, Robert Boyle. One of the most prolific figures in scientific revolution and the leading scientist of his day. So he was a proponent of the mechanical philosophy, which sought to explain natural phenomena in terms of matter and motion rather than appealing to the substantial forms and qualities. And he was a champion of experimental science, claiming that theory should conform to observation, and also advocated openness in the publication of experiment results and the replication of experiments for corroboration, and the importance of recording even those experiments that fail. So there's a life lesson there. Even if you fail, I mean, it is necessary to record it in your mind only so that you can improve. And at a time when these ideas, they were revolutionary. So he defended and developed the distinction between primary and secondary qualities and supported it with detailed experimental evidence. I'll also tell you that with the help of his colleague, Robert Hooke, he designed and improved an air pump capable of creating and sustaining a vacuum and used it to perform many famous experiments, Sir Firozi, which include investigating things like respiration, disease, combustion, sound and air pressure.
जी बिल्कुल शगुन, और आज हम याद कर रहे हैं मृणाल सेन को भी। ये भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक रहे। इनकी अधिकतर फिल्में बांग्ला भाषा में हैं। बंगाली, ओडिशा, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में समान रूप से सक्रिय रहे मृणाल सेन भारत में समानांतर सिनेमा आंदोलन के अग्रणी माने जाते हैं। मृणाल सेन ने सिनेमा पर कई पुस्तकें भी प्रकाशित की, इनमें न्यूज ऑन सिनेमा तथा सिनेमा आधुनिकता शामिल है। मृणाल सेन को भारत सरकार द्वारा 1981 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त 2005 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया। 2008 में इन्हें ओशियन सिने फैन फेस्टिवल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो शगुन, आइए सुन लेते हैं इनकी फिल्मों के कुछ गीत।
शो melodious, both of the songs. We are telling you about Mrinal Sen, the Indian filmmaker. So he's regarded as one of the pioneers of India's parallel cinema in general, and also in Bengali cinema in particular. Well, and he's noted for his experiments with form as well as the charged narratives of films such as Padathik and The Guerrilla Fighter, if I would translate it. And Sen's most enduring work is Bhuvan Shom in 1969, which is considered by many as the first Indian film in the parallel cinema or the new wave movement. I have something special for our listeners. We have it. And where he tells us that how creative people, they have stopped dreaming, and how he advises the filmmakers, the upcoming, the aspiring filmmakers. Let's listen in.
I say ideology is still there, but then what I feel that the creative people have stopped dreaming. Dreaming, it seems that to dream is banned. Dream has been banned. Maybe the people have been very skeptical. I don't mind one being skeptical. I'm also skeptical, but I also try to do something else. Enormous amount of skepticism coupled, and you have to couple it with enormous passion for living. These two things can be combined, very difficult, can be coupled. Then it will be marvelous. And this is what I find in Chaplin's films. On one hand, you find skepticism, enormous skepticism, and then also the intense passion for living. Two things are together, combined there.
We were listening to Mrinal Sen.
जी, आज पुण्यतिथि है हिंदी कवि और गजलकार दुष्यंत कुमार जी की भी। समकालीन हिंदी कविता, विशेषकर हिंदी गजल के क्षेत्र में जो लोकप्रियता दुष्यंत कुमार को मिली, वो दशकों बाद विरले ही किसी कवि को नसीब होती है। दुष्यंत एक कालजयी कवि हैं, और ऐसे कवि समय काल में परिवर्तन हो जाने के बाद भी प्रासंगिक रहते हैं। दुष्यंत का लेखन स्वर सड़क से संसद तक गूंजता है। इस कवि ने कविता, गीत, गजल, काव्य, नाटक, कथा आदि सभी विधाओं में लेखन किया, लेकिन गजलों की अपार लोकप्रियता ने अन्य विधाओं को नेपथ्य में डाल दिया। उनकी एक कविता है शगुन, बहुत ही फेमस कविता है, जिसका नाम है हो गई है पीर पर्वत सी। इसका हम रिसाइटेशन सुन लेते हैं गायिका कविता सेठ की आवाज में।
हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग
Well, today it's also birth anniversary of Joseph Rudyard Kipling, the prolific poet, short story writer, novelist, as well as a journalist, one of the most, I should say, well-known Victorian writers of his time. So in 1907, he was awarded the Nobel Prize for Literature for his great body of work, which included what? You know, it included The Jungle Book and his enduring poetic masterpiece, which was If. The poetic masterpiece is called If.
आज रघुवीर सहाय जी की भी पुण्यतिथि है। ये हिंदी साहित्य के उन कवियों में गिने जाते हैं जिनकी भाषा और शिल्प में पत्रकारिता का प्रभाव होता था और उनकी रचनाओं में आम आदमी की व्यथा झलकती थी। रघुवीर सहाय एक प्रभावशाली कवि होने के साथ ही कथाकार, निबंध लेखक और आलोचक भी रहे। वो प्रसिद्ध अनुवादक और पत्रकार भी थे। उन्हें वर्ष 1982 में उनकी पुस्तक लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया।
Today, we're also remembering guitarist and singer who played a key role in the transition from the blues to rock and roll music. I am talking about Alice Bates McDaniel, Bodidly. So he influenced many artists. It includes many famous names, the Beatles, the Rolling Stones, and his use of African rhythms and a signature beat, which is a simple five-accent Hambun rhythm, is a cornerstone of hip-hop, rock and pop music as well. And in recognition for his achievements, he was inducted into Rock and Roll Hall of Fame, also the Blues Hall of Fame. So let's listen into one of his creations.
Hold it inside, baby, diamond ring. If that diamond ring don't shine, he gonna take it to a private eye.
So he received a Lifetime Achievement Award from the Rhythm and Blues Foundation and the Grammy Lifetime Achievement Award as well. He is still, till date, recognized for his technical innovations. This includes tremolo, reverb effects as well to enhance the sound of distinctive guitars, rectangular guitars mainly.
और शगुन आज ही पुण्यतिथि है राजेंद्र अवस्थी जी की भी। ये भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार थे। ये कादम्बिनी पत्रिका के संपादक रहे। जहां एक ओर पत्रकार के रूप में इन्होंने कई मापदंड स्थापित किए, वहीं अपने साहित्य सृजन में भी अद्भुत सफलता इन्होंने पाई। राजेंद्र अवस्थी नव भारत, सारिका, नंदन और साप्ताहिक हिन्दुस्तान के भी संपादक रहे। इन्होंने कई चर्चित उपन्यासों, कहानियों और कविताओं की भी रचना की। और आज ही पुण्यतिथि है जेबी मोरायश की भी। ये कोंकणी भाषा के कवि और लेखक थे। वर्ष 1985 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्यकार जेबी मोरायश का जन्म सन 1933 में कर्नाटक में हुआ था। इनका पहला कविता संग्रह नोनी वोकले नाम से प्रकाशित हुआ।
Well, today we're also remembering Richard Rodgers, one of the dominant composers of musical comedy. He's known for his works in collaboration with Lawrence Hart, and I have a creation as well which is playing in the background by them. So he wrote more than 1500 songs and more than 50 musicals, which included Landmarks of American Theater, which includes The Sound of Music, Oklahoma. And one of the few entertainers is Richard Rodgers, having won all of the four major performing arts awards, which includes Emmy, Grammy, Oscar and Tony.
Well, श्रोताओं, इस खूबसूरत से गीत के साथ इजाजत दीजिए सरफिरोजी और शगुन को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
वेल, वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी आल्सो होप दैट यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड।
नमस्कार।